ओम शांति। आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं भगवान के घर में पहुंच गए। ये आपका बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। ये आप बाबा के शब्द याद करो कि अंत में जिसकी लाइन क्लियर होगी वो बाबा के घर पहुंच जाएंगे। जिस ट्रेन से आएंगे आखिरी ट्रेन होगी, जिस साधन से आएंगे वो आखिरी साधन होगा। तो आप सबकी बाबा के साथ सच्ची दिल की प्रीत थी, इसलिए आप आ गए। इसकी तो आपको बहुत 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 मुबारक हो। जो सिर्फ ज्ञान के आधार से चले, ज्ञान के आधार से वो रह गए, वो नहीं आ पाए। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिसकी बाबा के साथ प्रीत थी वो पहुंच गए। एक किसी ने मेरे पास एक दो लाइन लिखकर भेजा था, इसी जो प्रेजेंट चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, तो उसमें लिखा था अगर आप कोरोना से डरते हो तो भगवान को याद करो ना। अगर आप कोरोना से डरते हो कि मर जाएंगे तो भगवान को याद करो ना। अगर आपको उसके बारे में चिंता रहती है, चिंतन चलता है, तो बाबा पर विश्वास करो ना। बाबा ने कहा है हमारे बच्चों का कुछ नहीं होगा, दुनिया मरेगी लेकिन बाबा के बच्चे सेफ रहेंगे, बाबा के बच्चे रक्षक बनेंगे, बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। फिर लिखा था अगर आपको कोई प्रकार की चिंता है तो आप ज्ञान का मनन करो ना। अगर आप दुख से छूटना चाहते हो तो तन मन धन से सेवा करो ना। अगर आप पूरा श्रीमत पर चलते हो तो किसी भी कोरोना से डरो ना। पूरा श्रीमत पर चलते हो। कुछ दिन पहले पिछले गुरुवार को बाबा ने संदेश दिया था कि आप बच्चों का कुछ नहीं होगा, सिर्फ 8 बार 24 घंटे में 8 बार 5-5 मिनट बाबा को याद करो। ये काम बाबा ने दिया। आप 8 घंटा में 5-5 मिनट बाबा को याद करो तो आप बहुत आराम से सेफ रहेंगे। इस समय बहुत बड़ी जरूरत है स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी दुआएं देने का और दुआएं लेने का। दुआएं लोगे तो आप सेफ रहोगे, पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा, हिसाब किताब खत्म होता जाएगा। और जिसको आप दुआएं दोगे वो आत्मा भी सुखी हो जाएगी। बाबा ने तो यहां तक कहा है मुरली में कि आप किसी को बाबा की याद में रहकर अंत की स्टेज दृष्टि दोगे तो इबिल सोल भी भाग जाएगी। जब आपकी दृष्टि में इतनी ताकत होगी, पति तमो प्रधान भोजन सतो प्रधान बन सकता है, तो क्या आप अपने बाबा की याद की दृष्टि से कोरोना को नहीं खत्म कर सकते हो? ये तो बहुत मामूली चीज है क्या? वायरस ही तो है क्या? इसलिए इस संकल्प से स्वयं को परे रखो। कोरोना परोना का क्या, इसे परे रखो अपने को। सेफ्टी जो है, हाथ धुलाई करना, सफाई करना, ये सब जरूर करो, लेकिन स्वयं को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाओ। अगर श्रीमत प्रमाण चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे बाबा कहता है पानी पियो, तो एक मिनट बाबा की याद की दृष्टि पानी पर डालो। अगर उसमें कुछ तमो प्रधानता है, वायरस कुछ है, तो आपकी दृष्टि पानी को शुद्ध बना देगी। फिर पियो, कुछ भी खाओ पियो, बाबा की याद की दृष्टि देकर खाओ, कुछ भी आपका नहीं होगा। लेकिन बाबा के श्रीमत को पूरा फॉलो करो, ऐसा ना हो श्रीमत को भी फॉलो ना करो और दुनिया का जो सेफ्टी का साधन है वो भी ना फॉलो करो तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन बाबा के बच्चों का मुख्य है बाबा की याद और बाबा के बताए हुए श्रीमत के प्रमाण कर्म करना। तो आप निश्चिंत रह करके अपना पुरुषार्थ बढ़ाते चलो। तो प्रेजेंट इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है दुआएं दो, दुआएं लो। अब जब दुआओं की इतनी बड़ी ताकत है तो हम बच्चों से दुआएं क्यों नहीं सदा निकलती है या सदा दुआएं क्यों नहीं ले पाते हैं? इसका मेरे समझ से दो कारण हो सकता है। एक कारण है कि दुआएं देने और लेने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है वो बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। क्योंकि प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। दूसरी बात है कि हमें दुआएं कैसे देनी है और कैसे लेनी है, किसको देनी है, किससे लेनी है, ये स्पष्ट नहीं है। तो आज आपको इसी बात पर, जैसे बाबा ने बताया है, वो स्पष्ट कर रहे हैं। आपको 5 से दुआएं लेनी है और 5 को ही दुआएं देनी है। सिर्फ ब्राह्मण को नहीं, सिर्फ लौकिक को नहीं, लेकिन 5 को दुआएं देनी है, 5 से लेनी है। पहला है, बाबा से दुआ लेनी है और बाबा को शुक्रिया अदा करना है। बाबा से लेनी है और बाबा को शुक्रिया अदा करनी है। दूसरी बात, स्वयं से दुआ लेनी है और स्वयं को दुआ देनी है। स्वयं में 2 चीज है, आत्मा है और शरीर है। आत्मा को भी दुआ देनी है, आत्मा से भी दुआ लेनी है। इस शरीर को दुआ देनी है, इस शरीर से दुआ लेनी है। तीसरा है, ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देनी है और ब्राह्मण आत्माओं से लेनी है। तीसरा है, चौथा, प्रकृति को दुआ देनी है और प्रकृति से दुआ लेनी है। और 5वां है, लौकिक अन्य आत्माएं जो हैं उनको दुआ देनी है और उनसे दुआ लेनी है। जो इन 5ों से दुआएं ले सकते हैं और इन 5ों को दुआएं दे सकते हैं, उनके लिए बाबा ने मुरली में कहा था कि आपके अंदर ज्ञान की पूरी धारणा नहीं हो पा रही है, योग से पूरा शक्ति नहीं ले पा रहे हो, दैवी गुण नहीं धारण हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दो, सिर्फ एक काम करो, दुआ दो, दुआ लो, तो भी बच्चे पास हो जाओगे। तो आपको क्लियर करते हैं कि एक एक को दुआएं हम कैसे दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। पहला है, बाप से आशीर्वाद या दुआ लेनी है। आपको कोई भी आशीर्वाद या दुआ कब देगा, या आप अपने लौकिक घर में देख लो, आप किसी को आशीर्वाद या दुआ कब देते हो। एक है कोई प्रणाम करता, राम राम कहता, दुनिया के हिसाब से वो तो आप उसका रिटर्न बोल देते हो, गुड मॉर्निंग बोला तो गुड मॉर्निंग बोल दिया, जो भी बोला आप बोल देते हो। लेकिन दिल की दुआएं कब आपके दिल से उसके लिए निकलती है, वो है आज्ञाकारी बनने से। जैसे देखो आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, परिवार है, आपके घर में जितने बच्चे हैं जरूर नंबर वार तो होंगे ही, लेकिन चारों बच्चे मान लो अच्छा कमाते हैं, अच्छा पद पोजीशन पर हैं, बुद्धि तेज है, लेकिन आपका कहना नहीं मानते। और जो पांचवा बच्चा है जिसकी बुद्धि कम है, पैसा भी नहीं कमा पा रहा है, लेकिन आपकी हर आज्ञा मानता है, तो आपकी दिल की दुआ किसके लिए निकलेगी? किसके लिए निकलेगी? सोच लो, जो आज्ञाकारी सदा उसके लिए मन में यही रहेगा, बाबा इसकी भी बुद्धि तेज हो जाए, बाबा ये भी कमाने लगे, बाबा ये भी आगे बढ़ जाए, सदा उसके लिए दिल से दुआएं निकलती रहेंगी, है ना? ऐसे तो अगर आप बाबा के आज्ञाकारी बनो, चाहे आप में विशेषता गुण है या नहीं है, लेकिन बाप का आशीर्वाद आपको सर्व गुण विशेषताओं से संपन्न बना ही देगा। जैसे एक हम आप सभी हैं, चलते बाबा के श्रीमत प्रमाण है हर एक बच्चा, लेकिन श्रीमत पर चलना कहाँ किसे जाता है? किसको बाबा दुआ देता है? चलते सब हैं, लेकिन किसको बाबा दुआ देता है? एक उदाहरण, जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मान लो सिर दर्द हो रहा है, कुछ भी है, आप किसी को कहते हो भाई साहब थोड़ा मुझे ये दवाई ला करके दे दो, और वो उसी समय दौड़ के जाता है और ला करके दवाई आपको दे देता है, तो दुआ निकलेगी या नहीं? ऑटोमेटिक निकलेगी। और आपने कहा भाई साहब दवाई लाकर दे दो, वो उस दिन दवा लाकर ना दे, अगले दिन 2 गोली के बजाय 4 गोली लाकर दे दे, तो भी दुआ निकलेगी? नहीं ना। यही कारण हमारा सबका है जो बाबा से दुआ ले नहीं पाते। मुरली सुनते अभी हैं और करते हफ्ते के बाद हैं, करते या नहीं भी करते, इसलिए बाबा की आशीर्वाद मिलती नहीं है। मम्मा की विशेषता क्या थी सब जानते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो शब्द उच्चारण किए, तुरंत मम्मा करने लग जाती थी। इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनने से बाप का आशीर्वाद मिलने से फायदा क्या होता है। फायदा जैसे मम्मा थी, मम्मा के सामने सब प्रकार की परिस्थितियां थी, तन का भी, समाज का भी, मन के पुराने संस्कार का भी, जो सब कुछ थी जो हमारे सबके पास है, बल्कि हमसे ज्यादा मम्मा के पास जिम्मेदारी थी, लेकिन इतनी परिस्थिति होते हुए भी इतने थोड़े समय में कैसे अपने पुरुषार्थ को बढ़ा लिया। क्या मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं आए क्या? क्या मम्मा के सामने सामाजिक परीक्षाएं नहीं आई क्या? क्या मम्मा के सामने शारीरिक विघन नहीं आया क्या? सब कुछ आया, लेकिन मम्मा का पुरुषार्थ एक रस बढ़ता गया, रुका नहीं। इसका एक ही कारण था, वो था मीठे बाबा का आशीर्वाद। जैसे मम्मा पुरुषार्थ को बढ़ाती थी, पुराने संस्कार विघन डालते थे, ऐसे नहीं नहीं डालते थे, डालते थे, लेकिन बाप का आशीर्वाद, बाप की दुआएं संस्कार को दबा देती थी, संस्कार प्रकट नहीं हो पाता था, दब जाता था। भगवान का आशीर्वाद है, साधारण बात नहीं है। सब जानते हैं, मम्मा के सामने सामाजिक पेपर था, कोर्ट में पेशी हुई, सब जानते मम्मा की कहानी। लेकिन बाप का आशीर्वाद कोर्ट में आखिरकार जज को झुकना पड़ा और मम्मा की विजय हो गई, केस खत्म ही हो गया। शारीरिक बीमारी के बारे में भी सुना होगा, मम्मा को कैंसर था, दर्द होता है कैंसर में, लेकिन लास्ट दिन, जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ना था, उस लास्ट दिन भी मम्मा ने हर एक बच्चे को गोद में बिठाया, अंगूर खिलाया, स्नेह शक्ति की दृष्टि दी। लास्ट दिन, शरीर छोड़ने के दिन, क्या मम्मा को दर्द नहीं था क्या? था, लेकिन बाप का आशीर्वाद दर्द को दबा देता है, दर्द महसूस होता ही नहीं। जैसे प्रेजेंट में देखो, अपनी गुलजार दादी है, फल बीमार है, लेकिन डॉक्टर पूछते हैं, दादी कहाँ दर्द है? कहते कहीं नहीं, दर्द तो है ही नहीं। ये बाप का आशीर्वाद। कर्म भोग भी सब चुकतू हो रहा है और दर्द है ही नहीं। ये है भगवान का आशीर्वाद। तो जो पल बीता सो बीता, अभी कल से मुरली सुनते सुनते लक्ष्य ले लो। मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट, सारा नहीं, एक पॉइंट ले लो जो आज मुझ आत्मा को इसको धारण करना है। कोई भी पॉइंट जो भी ले लो, मुझे ये धारण करना है। और उस एक पॉइंट पर सुबह से लेकर रात के सोने तक मनन चिंतन पुरुषार्थ अभ्यास सब करते चलो। अगर किसी बात पर आप 7-8 घंटा अगर अटेंशन दे दिया तो क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? बोलो, स्वरूप में आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। क्या आपको संपूर्ण बनने में देरी लगेगी? नहीं ना। लेकिन हम करते क्या हैं, मन को खाली छोड़ देते। कोई भी काम श्रीमत प्रमाण मन को देते नहीं है। अगर मन को श्रीमत प्रमाण काम दे दें तो मन तो थोड़े समय में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जो सोचेगा वही होगा। जो चीज मन सोचता है अगर पुराना संस्कार इसके बस अगर मन ने संकल्प किया तो 100 गुना पक्का होता है, और पक्का हो जाता है वो संस्कार, क्योंकि वही वायुमंडल है, वही वाइब्रेशंस है दुनिया में, वो और पक्का हो जाता है। अगर मन ने 10 बार 20 बार 50 बार एक श्रेष्ठ संकल्प सोचा तब वो संकल्प स्वरूप में आता है, क्योंकि वायुमंडल के अपोजिट है। इसमें आपको वायुमंडल का सहयोग नहीं है, इसमें आपका पुरुषार्थ और बाबा की मदद। इसलिए कल से ये एक बात करके देखो, फिर देखो बाबा का आशीर्वाद या दुआ कैसे हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती है। खुद अनुभव करेंगे, योग सहज हो जाएगा। जो अभी योग मुश्किल मुश्किल हो रहा है वो सहज हो जाएगा। तो भगवान से आशीर्वाद लेनी है और भगवान को शुक्रिया अदा करना है। कब शुक्रिया अदा करेंगे? जब आपको भगवान के द्वारा ये महसूसता होगी कि भगवान ने हमको कितना ऊंचा बना दिया है, कितना महान बना दिया है, तब दिल से निकलेगा शुक्रिया बाबा, हम तो क्या थे, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आप अभी ही जैसे भी हैं, चाहे गांव की एकदम अनपढ़ माता है तो भी इतनी महान है, इतनी महान है जितना संसार में कोई है ही नहीं। संसार में महान चार लोगों को माना गया है, एक साइंटिस्ट को, दूसरा विद्वान को, तीसरा राजा को और चौथा है धनवान को, इनको माना गया है। अब आप प्रैक्टिकल देखो, आप कोई जैसे दुनिया में हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कहां तक कर सकते हैं? पांचों तत्वों तक, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते। इनका रिसर्च पांच तत्व सूर्य चांद तारा गण तक है और आपकी पढ़ाई जहां उनका रिसर्च का अंत है वहां से आपकी पढ़ाई शुरू होती है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, मैं पांच तत्वों से पार परम धाम की रहने वाली, जहां साइंटिस्ट स्वप्न में भी नहीं जा सकते। कितने ऊंचे हो, विद्वान में देखो, भगवान ने आपको तीनों लोकों, तीनों कालों क्या नहीं ज्ञान दे दिया है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। राजा ऊंचा होता है, आप लोग हो, आप लोगों में से कोई आपको कहे कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन आप बाबा का हाथ छोड़ दो, होगे राजी? तो उससे बड़े हुए या नहीं हुए? सोचो, हुए बड़े या नहीं हुए? आप हर चीज में, प्रैक्टिकल में इतने महान हो, इसलिए अपनी महानता के बारे में सोचो, तब दिल से निकलेगा वाह बाबा, कमाल है आपकी, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा से प्यार जुटेगा, बाबा के प्रति स्नेह और सम्मान का रिगार्ड की भावना उत्पन्न होगी, यही आपको योग का रास्ता सरल कर देगा, दुनिया से वैराग्य दिला देगा। ये जब तक बाबा से प्यार नहीं जुट पा रहा है तब तक योग बहुत डिफिकल्ट है, तब तक योग लगाना मुश्किल है, लगना भी मुश्किल है। इसलिए भगवान की दी हुई प्राप्तियों को इमर्श करके भगवान को दिल से शुक्रिया अदा करो, ठीक है? फिर अपने को भी शुक्रिया अदा करो। दूसरा है, आत्मा से दुआ लो और आत्मा को दुआ दो। आत्मा से दुआ लेना अर्थात आत्मा को पूरे श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर मनसा में भी अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो आत्मा से दुआ ले नहीं सकेंगे और आत्मा की गिरती कला हो जाएगी। इसलिए आत्मा से दुआ लेने की विधि है श्रीमत प्रमाण चलाओ, और आत्मा को दुआ देने की विधि है आत्मा के भाग्य के बारे में साक्षी हो करके खुद आत्मा की महिमा करो। वाह, इस आत्मा का कितना श्रेष्ठ भाग्य है, भगवान मिल गया है जो असंभव था। ऐसे आत्मा के भाग्य के बारे में जितना सोचोगे साक्षी होकर, उतना आत्मा के प्रति दिल से दुआ निकलेगी। दूसरा, इस शरीर को दुआ दो और इस शरीर से दुआ लो। कई ब्राह्मण बच्चे इस शरीर को दुआ नहीं देते हैं बल्कि श्रापित कर देते। क्या? जब ज्ञान में आए तो कईयों के सामने विघ्न आना शुरू हो जाते। कई ज्ञान में आने के बाद बीमार रहना शुरू कर देते। कोई बुढ़ापे में ज्ञान में आता है, किसी के पास धन कम है गरीबी में ज्ञान में आते हैं, तो क्या कहते हैं? बाबा, मेरा ऐसा संगम ऊपर भाग्य क्यों था कि मैं गरीब आत्मा इतना बना यज्ञ में सेवा भी नहीं कर सकता हूं। बाबा, मैं बुढ़ा था तब आप क्यों मिले, पहले आप मुझे क्यों नहीं मिल गए थे जो शरीर से सेवा करता। ऐसे कई कमियां सुना करके बाबा को बताते हैं। ये है शरीर को श्रापित करना, ऐसा कभी नहीं सोचना। इस शरीर के बारे में सोचो कि आप बुढ़े हुए हैं तब आपको भगवान मिला है, बुढ़े हुए हैं तब। आप सोचो जब जवान थे तब तो भगवान मिला नहीं, अब इस बुढ़ापे में भगवान मिला तो जवानी अच्छी या बुढ़ापा अच्छा? सोचो। आप पहले तंदुरुस्त थे तब भगवान नहीं मिला, बीमार हुए तब भगवान मिला, तो दोनों में कौन सा अच्छा है? सोचो। आप एक एक कर्म इंद्रियों के बारे में सोचो। आंख है, कम दिखाई पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन सोचो तो सही कि इस आंख की कितनी बड़ा भाग्य है, कितनी बड़ी विशेषता है कि वाह, इस चश्मे वाली आंख ने भगवान के रथ को देखा, भगवान का अवतरण देखा, भगवान का घर देखा। वाह मेरे चश्मे वाली आंख, वाह। सोचो, जब आंख अच्छी थी तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देखते थे। ऐसे आपका शरीर बीमार है, शरीर नहीं साथ दे रहा है, लेकिन आप इस शरीर को आप सोचो कि इस बीमार शरीर जो साथ नहीं दे रहा है, इस बीमार शरीर से भगवान की प्राप्ति हुई है। जिस बीमार शरीर के द्वारा हम भगवान से 21 जन्म पद की प्राप्ति करते हैं, इस बीमार शरीर से भगवान का प्यार पाते हैं, भगवान का पुचकार पाते हैं, भगवान का दुलार मिलता है। कितना भाग्यशाली ये बीमार शरीर है, सोचो इसको। कान है, कम सुनाई पड़ता है, लेकिन इस कान है कम सुनाई पड़ने वाले का भाग्य देखो कि इस कान ने भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुने हैं, भगवान के महावाक्य। तो आप सोचो इस कान का कितना बड़ा महत्व है कि भगवान के डायरेक्ट महावाक्य को इसने सुना। वाह, मेरा कम सुनने वाला कान, वाह, भले साधन लगा के सुन रहे। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, लौकिक में देखो एक घोड़ा है, अगर आप उसे चाबुक बार बार मारते रहो तो थोड़ी देर तो दौड़ेगा, उसके बाद आपको तंग करना शुरू कर देगा। और अगर आप घोड़े का पीठ थपथपाओ, उसे सहलाओ, उसे प्यार दो, तो क्या करेगा वो? जब तक उसमें दम है आपका पूरा मदद करता रहेगा। ऐसे इस शरीर को रोज शाबाश शाबाश दो, वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह वाह, इस शरीर ने भगवान को पाया है, वाह इस शरीर का कमाल है। तो आप देखो ये शरीर कैसे साथ देने लगता है। शरीर को दुआ दो, इसको श्रापित नहीं करो। जो हो जैसे हो, लूले लंगड़े बहरे काने शरीर से कैसे भी हो, लेकिन भगवान को प्रिय हो। और क्या चाहिए दुनिया में? दुनिया तो नफरत की दृष्टि से देखेगा और भगवान आपको प्यार कर रहा है, इससे बड़ी और क्या प्राप्ति चाहिए? और इस शरीर से दुआ लेने की विधि है, इस शरीर के द्वारा यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करो। इसमें पद का अहंकार नहीं लाओ कि मैं ऑफिसर हूं, धनी हूं, फलाना हूं, ये नहीं। इस शरीर से जितना यज्ञ की सेवा करोगे उतना आपका खाता खत्म होगा। एक उदाहरण करके देखो, कईयों को अनुभव भी होगा। मान लो आप बीमार हो, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बीमार हो, आप सेंटर पर आकर के आप बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, कुछ भी करो, बाबा के घर की सेवा करो, देखो आपकी वो बीमारी खत्म हो जाती है या नहीं, है अनुभव या नहीं। बहुतों को अनुभव है, मुबारक हो। क्यों खत्म हुई? क्योंकि यज्ञ की सेवा की उसकी दुआएं आपके खाते को खत्म कर दिया और आप ठीक हो गए। इसलिए भाई लोग ज्यादा देह अभिमान में आते, कई लोग वो देह अभिमान तोड़ के जाना आज से सेंटर पर झाड़ू पोछा लगाना सीखो। क्यों? जो सेंटर पर यज्ञ की सेवा करेगा, ये कल्प का अंतिम शरीर है, पूरे कल्प का हिसाब किताब इसी शरीर से चुकतु होना है। इसलिए ब्राह्मण ज्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन यज्ञ की सेवा करो तो आपकी बीमारी काफी हद तक, आधा पौना से भी ज्यादा बीमारी सेवा के कारण खत्म हो जाएगी। जो थोड़ा है वो भोग और योग के द्वारा खत्म कर। इसलिए सेंटर पर जाकर ये देह अभिमान लाना बिल्कुल छोड़ दो। बाबा के घर से पक्का करके जाना, दीदी से पूछो वहां जाके, सेंटर पर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जो सेवा मिलती है करो। इससे फायदा प्रैक्टिकल देख लोगे। अगर आपने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मान लो थोड़ा पद है लौकिक में, तो जो आपसे कम पद वाले हैं, क्या वो आपको देखकर फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना, तो उसकी शेयर दुआओं की किसकी मिलेगी। और फिर झाड़ू पोछा लगा कहां रहे हो? उस स्थान पर जहां पर भगवान का भोग बनता है। जिस स्थान पर भगवान का भोग स्वीकार कराया जाता है, भगवान डायरेक्ट खाता है। जिस स्थान पर स्वयं भगवान आकर के गीता का ज्ञान देता है, जिस स्थान पर ज्ञान सुन करके मनुष्य से देवता बन जाते हैं, उस स्थान की सेवा कर रहे हो, ये सोचो आपके लिए कितने बड़े भाग्य की बात है। इसलिए ये देह अभिमान खत्म कर दो। हो सकता है भाई लोग, हो सकता है चाहे बुढ़े हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, माताएं, हो सकता है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो सबको, अच्छी बात है। जाकर बोलो दीदी, बोलो क्या सेवा करनी है, वो तो अपने आप थोड़ा सकुचाएंगी आपको कहने के लिए। लेकिन बोलो नहीं दीदी, हम पोछा लगाएंगे। लगाओ। हमारी क्वीन मदर कहती थी, दीदी के लोग झुक झुक, मर मर, सिख सिख। जब तक ब्राह्मण जन्म है झुको, सीखो, जीते जी मरो, देह अभिमान से मरो, तो नंबर वन ले लेंगे। अगर माताएं बर्तन मांजती हैं, सोचो वो बर्तन कौन सा बर्तन है, साधारण है क्या? जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया गया है, जिस बर्तन में बना हुआ भोग भगवान स्वयं स्वीकार कर रहा है, जिस भगवान को खिलाने के लिए 63 जन्म क्या नहीं किया, नहीं खाया, अब प्रैक्टिकल भगवान भोग खा रहा है, वाह मेरा भाग्य जो बाबा आपने मुझको इस सेवा के लायक समझा, शुक्रिया बाबा आपकी। देखो फिर कैसे आपका ये शरीर साथ देने लगता है। तो आज से ये पाठ पक्का कर लो, एक रोज होम वर्क, दूसरा इस शरीर को रोज शाबाश 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 देते रहो। ओम शांति।